हेलो नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पाथुकर। आज मोबाइल वाणी के मंच पर हमारे साथ विशेष रूप से रूबरू होने जा रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल। नमस्कार सर।
नमस्कार दिनकर जी, बोलिए।
सर, हम आपसे आज यह जानना चाह रहे कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सरकार का राजधर्म क्या होना चाहिए।
आपकी पहली जो आपने बात करी कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, यही अभी गलत साबित, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ लोकतंत्र है। 10 साल से हमारे ऊपर हम ऐसा बोलेंगे तो भी क्रिमिनल केस हो रही है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सब सस्पेंड किए गए हैं, अवैध तरीके से। मैडम इंदिरा ने सस्पेंड किए थे तो तरीका था, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया था, ये गैर कानूनी गैर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक का आत्मा क्या होता है कि लोगों को स्वतंत्र विचारों से जीने का अधिकार होता है। हम क्या खाए, हम क्या पिए, हम कहाँ जाए, इसका अधिकार होता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, 91 क्या कहता है, ये अभी हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हम सिखाए क्या। पहली बात ये भी ये थी कि ये लोग लोकतंत्र जो अभी सत्ता में आए वो स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलन में भी स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात ये हिंदू धर्म से नाम जो चल रहा है, मैंने अभी अभी फेसबुक पे डाला है कि जो शिकागो में परिषद हुई थी उसमें हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं था, ब्राह्मण जन्य था। तो ये ब्राह्मण जन्य धर्म के लोग हमेशा हमारा भारत के बाप की मक्तेदारी समझता है, मालकीना हक लगाता है, और उनका कहना है कि हम सब 2 जून के रोटी के अधिकारी है। तो ये स्वतंत्र विचार, संपत्ति, शिक्षा, आरोग्य, ये सब आपको आपको क्या संबंध है। इसीलिए देश में आज हम भयंकर संकट में, हम तो 2002 से बोल रहे हैं, क्योंकि उनका प्लानिंग पीएम बनाने का, जब मोदी सीएम बने तो पहला काम क्या किया, खुद को ही खुद ने ओबीसी में डाला और गोधरा किया। उसके पहले रथ यात्रा के सारथी वो थे, बाबरी मस्जिद के गिराने के पहले जो रथ यात्रा थी सारथी वो थे। तो आज वो हम सबको गुमराह कर, जो धर्मी अस्तित्व में नहीं है उसके नाम से ये लोग हम सबको गुलाम बना रहे हैं। और ये गुलामी अभी इसको बोलते हैं हम कि सबसे हाइट ऊंचाई पर पहुंची है, लेकिन हमारे लोग बेचारे भोले वाले लोग वो ये असलियत जानते नहीं। हिंदू धर्म का नाम कब आया, जब तिलक जा रहे थे जाने का समय, तब उन्होंने सभी पूना के ब्राह्मणों को की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हम ब्राह्मण धर्म से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हमारा नाम बदलना चाहिए। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तब से वो ब्राह्मण धर्म गायब हो गया, हिंदू धर्म आया। पहला उन्होंने गणपति उत्सव शुरू, जब फुले ने शिव जयंती शुरू करी तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने, तो ये बड़ी बड़ी लंबी कहानी है, कहानी लोग सुनते रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से हम सब भारतीय को, भोले भाले भारतीयों को विनती करता हूँ कि हम सब पहले ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए।
सर, जैसा कि वर्तमान में देश भर में ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, हम इस संबंध में भी आपसे आपकी महत्वपूर्ण राय जानना चाहेंगे।
नहीं, मैं इसके खिलाफ तो 2013 से कांग्रेस के राज में मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन किया था कि हमें ईवीएम से छुटकारा चाहिए, क्योंकि हम कहाँ वोट देते हैं, इसको वोट देते हैं, यदि यही नहीं हम समझ पाते तो हम क्या करेंगे। जैसे कि मोदी जी कहते थे कि रडार है, वो बादल है, उसके कारण पाकिस्तान की रडार को हमारे एरोप्लेन नहीं दिखते, वैसे तो हम गलत बात नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमें मालूम, और यही तो हमारे प्रजातंत्र नहीं हुए इसीलिए। और बहुत कारण है, लेकिन मैं एक लफ्ज में कहता हूँ, किसी भी हालत में आज के रेजिम ईवीएम मैनेज किए बिना राजनीति नहीं कर सकते, उनका हजारों साल का झूठ और मोदी शाह का वो जन्मे हुए तब से झूठ, दोनों का एक संगम हो गया है और ये सब मिलकर हमें बिल्कुल फंसा रहे। तो इसलिए ईवीएम तो पहले हटाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आपने धर्मनिरपेक्षता की करी, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लोगों को समझना समझाना चाहिए कि जो जो है अपने घर में धर्म है करो, हम ही सभी धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं और हम सभी धर्मों के हेड है, ईश्वर होगा, अल्लाह होगा, यीशु होगा, हम सबको मानते हैं, इसका राजनीति से जीरो संबंध है, जीरो। तो पहले हमें इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा कि भाई राजनीति और धर्म का संबंध नहीं, जहाँ धर्म आया राजनीति वो देश सब बर्बाद हुए, हम भी बर्बाद होने के कगार पर है। और ये बर्बाद करने के लिए मैं संघ की आइडियोलॉजी बोलता हूँ, वो कहते हैं कि हम देश के मालिक है और आप सब लोग यानी संघी ब्राह्मण छोड़ के सब लोग सिर्फ 2 जून के रोटी के अधिकारी। तो मेरा आह्वान क्या है अभी कि भाई जो नॉन संघी ब्राह्मण है वो खुद देश को बताए कि जापान बर्बाद हुआ था अमेरिकी ने बॉम्ब डालने के बाद, वहाँ की समुराई जात थी, सबसे अच्छी जात, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम आज से दलित, यानी हम आज से सबसे नीचे, क्योंकि हमें देश का विकास करना। दूसरा, हिटलर ने देश बर्बाद किया लेकिन सभी लोग साथ आए तो देश आज टॉप पर है। मुसोलिनी ने देश बर्बाद किया था लेकिन सभी लोग साथ आए तो वो भी देश टॉप पर है। तो हमारे देश के सभी नॉन अरेस्ट वाले ब्राह्मीन को मैं विनती की, ये देश को समझाओ कि देश बर्बाद होने वाले भी हमसे कई गुना आगे, हजारों गुना आगे है, और हम हजारों साल से कुपोषित है, भूखमरी हमारी हर दिन चल रही है, ना हमारे पास संपत्ति है। अभी आज 100 करोड़ देश दिन का साल महीने का नहीं साल का महीने का उत्पन्न 2,000-3,000 से 10,000 तक, इसका मतलब हम क्या जानवर का जीवन जी रहे हैं। तो इसके खिलाफ मैं धर्म के खिलाफ उठो ऐसा कहूंगा नहीं, ईश्वर के खिलाफ बोलो ऐसा मैं कहूंगा नहीं, लेकिन धर्म में इनका कोई काम नहीं ये समझकर हमें वोटिंग।
सर, हम आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे, जैसा कि
लंबी हो गई बुलाकर, लोग देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ठीक है बोलो।
अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रजातंत्र में एक आदर्श लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वर्तमान में विपक्ष की देश में क्या स्थिति, इस संबंध में हम आपसे जानना चाहेंगे।
अरे यार, आप फिर मुझे डिफिकल्टी में डाल रहे हैं। आज तो हमें विपक्ष की जरूरत है, लेकिन विपक्ष का भी इतिहास देखें तो जो भी पार्टी सत्ता में थी उनके सब सेक्रेटरी आरएसएस के थे, जजेस आरएसएस के थे, तो इंडिपेंडेंट कारोबार को कभी हुआ नहीं। और ये जो सत्ता में थे पक्ष पार्टी के नेता, उन्होंने गलती करी, पैसे खाए, तो मोदी इनके पीछे ईडी लगाता है तो वो बाहर नहीं आते। इसलिए हमारे जैसे लोग जो है कि हमारे पीछे ईडी लगाएंगे तो 10-5 पायजे में शेड लेके जाएंगे, ऐसे लोगों को मान्यता नहीं। इसलिए फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये काम सिर्फ नॉन संघ ब्राह्मण लोग लीड लेंगे तो आसान होगा। हम तो काम कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर मोबाइल वाणी के मंच पर अपनी बात साझा की।